नमस्कार। आज हम ना पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही विचारोत्तेजक उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। विषय है तीर्थ सेवन का महत्व और प्रयोजन।
हाँ।
देखिए, जब हम तीर्थ सुनते हैं ना, तो अक्सर मन में क्या आता है? पवित्र नदियाँ, मंदिर, धार्मिक यात्राएं।
बिल्कुल, यही आम धारणा है, पर पूज्य गुरुदेव ना वो इस सोच को एक एक गहरा आयाम देते हैं।
अच्छा, कैसे?
उनके अनुसार भाई, असली तीर्थ तो वो ज्ञान गंगा है।
ज्ञान गंगा?
हाँ, जिसमें डुबकी लगाकर, मतलब जिसमें अवगाहन करके इंसान अपने मन के मैल धोता है, वो कलुष कषाय जिन्हें कहते हैं। मतलब देखिए, गंगा जी में नहाने से शायद बाहरी शुद्धि हो कुछ देर के लिए, पर ये जो ज्ञान गंगा है ना, असली तीर्थ, इसमें नहाने से अंदर का परिष्कार होता है।
तो ये अंदर के बदलाव की बात है, जिस सिर्फ बाहर की नहीं।
एग्जैक्टली, भीतरी रूपांतरण, भविष्य का रास्ता भी साफ होता है इससे।
अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया हुआ तीर्थ का। तो चलिए फिर इस उद्बोधन के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें जरा समझते हैं। गुरुदेव ये साफ कहते हैं कि सच्ची तीर्थ यात्रा मतलब सिर्फ किसी जगह पहुंच जाना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
असली फायदा तो तब है जब व्यक्ति उस माहौल का, उस पवित्र वातावरण का इस्तेमाल करे अपने आत्म मंथन के लिए।
सही कहा, मतलब अपनी भूलों को देखना, उन्हें स्वीकारना।
हाँ, और फिर उनके प्रायश्चित का संकल्प लेना, भविष्य के लिए सही दिशा तय करना।
और यहीं पर पूज्य गुरुदेव का जोर इस बात पर है कि तीर्थ सिर्फ भावना या जानकारी का विषय नहीं है।
अच्छा,
असली बदलाव तब आता है जब ज्ञान, मतलब सही समझ, और कर्म यानी सेवा, अनुशासन, ये दोनों साथ आए।
ज्ञान और कर्म का समन्वय।
हाँ, वो उदाहरण देते हैं ना, जैसे बिजली के दो तार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव।
हाँ हाँ,
वो जब मिलते हैं तभी तो करंट आता है।
ठीक है,
वैसे ही ज्ञान और कर्म के मिलने से ही अध्यात्म का असली असर जीवन में दिखता है।
मतलब सिर्फ पूजा पाठ या स्वाध्याय काफी नहीं है?
नहीं, वो ज्ञान पक्ष है, जरूरी है पर अधूरा है। उसके साथ सेवा, परोपकार, अनुशासन जैसे सत्कर्म जुड़ना ही चाहिए, ये कर्म पक्ष है।
गुरुदेव ने इसके लिए प्राचीन गुरुकुलों का भी उदाहरण दिया है ना, अरण्यक, बुद्ध विहार।
हाँ बिल्कुल, आरण्यक खासकर उनके लिए थे जो वानप्रस्थ आश्रम में आ गए हैं, मतलब वरिष्ठ जन, उनके लिए सेवा और आत्म साधना के केंद्र थे वो।
और गुरुकुल, बुद्ध विहार, ये सब?
वो कहते हैं जैसे आरोग्य लाभ के लिए सैनिटोरियम का माहौल मदद करता है ना।
हाँ बिल्कुल, एक खास वातावरण होता है।
वैसे ही इन जगहों पर रहकर आत्मिक उन्नति आसान हो जाती थी। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी।
तो फिर क्या थी ये जगह?
अरे, ये तो जीवन जीने की कला सिखाने के केंद्र थे। अनुशासन, संयम, तपस्या, इन सब का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर समझिए।
और इसी के मुकाबले आज के तीर्थों की स्थिति पर वो चिंता भी जताते हैं।
हाँ, वो तो है, बहुत से तीर्थ अब क्या है, बस टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं।
सही बात है,
ना तो वहाँ वैसा मार्गदर्शन मिलता है जैसे पुराने ऋषियों से मिलता था, ना ही वो पवित्र अनुशासित माहौल।
दान पुण्य के नाम पर भी कई बार गड़बड़ होती है।
बिल्कुल, जेबें कटती हैं, और जो असल मकसद था तीर्थ का, आत्म परिष्कार, जीवन की दिशा मिलना, वो तो कहीं पीछे छूट गया है।
लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? मुझे याद है गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया था।
हाँ हाँ, महाराष्ट्र में हनुमान मंदिरों की स्थापना, वो कमाल का उदाहरण है।
वो मंदिर आज के मंदिरों जैसे नहीं रहे ना?
बिल्कुल नहीं, मिट्टी की दीवारें थीं, फूस के छप्पर, पत्थर पर सिंदूर लगा दिया, बस हो गई मूर्ति।
पर उनका मकसद सिर्फ पूजा करवाना नहीं था।
तो क्या था?
हर मंदिर के साथ एक व्यायाम शाला जुड़ी होती थी।
अच्छा,
अखाड़ा टाइप?
हाँ, समझिए वैसा ही, शारीरिक स्वास्थ्य, बल, हिम्मत बढ़ाने पर जोर था।
और रात में कथाएं भी होती थी।
हाँ, जैसे दासबोध का पाठ, पर वो सिर्फ पुण्य के लिए नहीं, उन कहानियों के जरिए उस समय की जो सामाजिक या राष्ट्रीय समस्याएं थी ना,
हाँ,
उनका हल ढूंढा जाता था, लोगों में स्वाभिमान जगाने का काम होता था। वो मंदिर असल में सामाजिक चेतना और संगठन के केंद्र बन गए थे।
वाह, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी तो वहीं से प्रेरणा मिली थी कहते हैं।
बिल्कुल, उन्हें बल मिला वहां से।
तो समर्थ गुरु रामदास के इसी मॉडल से प्रेरणा लेकर पूज्य गुरुदेव ने आज के युग के लिए क्या रास्ता दिखाया?
हाँ, तो इसी भावना को, इसी स्पिरिट को फिर से जगाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तीर्थों और शक्तिपीठों की स्थापना पर जोर दिया।
अच्छा,
उनका सपना था कि ये सिर्फ पूजा स्थल न हो, बल्कि आज के जमाने के गुरुकुल बने, शिक्षण संस्थान बने,
जहाँ व्यक्ति का पूरा विकास हो सके।
बिल्कुल, ज्ञान भी मिले, चरित्र भी बने, स्वास्थ्य भी सुधरे, और सेवा करने का मौका भी मिले।
मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट।
हाँ, वो चाहते थे कि ये केंद्र आज के जो भटके हुए तीर्थ है ना, उनका एक सही विकल्प बने।
तो इसका मतलब ये हुआ कि तीर्थ यात्रा का एक जरूरी हिस्सा हमारे लिए ये भी है कि हम ऐसे जीवंत तीर्थों को बनाने और चलाने में मदद करें, अपना योगदान दें।
निश्चित रूप से। और यहीं पर तीर्थ यात्रा का एक और गहरा मतलब सामने आता है, प्रायश्चित।
प्रायश्चित,
हाँ। गुरुदेव के अनुसार असली प्रायश्चित सिर्फ अपनी गलतियों पर पछता लेना या गंगा में एक डुबकी लगा लेना भर नहीं है।
तो फिर क्या है
असली प्रायश्चित? है कि आप सक्रिय रूप से समाज के लिए कुछ अच्छा करें, उदारता से अपना योगदान दें, उन भूलों का मार्जिन ऐसे करें।
ये योगदान कैसे हो सकता है?
ये समय दान हो सकता है, मतलब आप अपना समय दें, अपनी मेहनत लगाएं, सेवा करें। या फिर ये अंशदान हो सकता है, जिसे हम अर्फदान भी कह सकते हैं, मतलब अपने साधनों का, अपनी कमाई का एक हिस्सा देना।
अंशदान, इसका क्या प्रयोजन बताया गुरुदेव ने?
देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि बहुत से ऐसे निष्ठावान सेवा भावी पुरुष और नारी हैं जो अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाना चाहते हैं।
हाँ, होते हैं ऐसे लोग,
पर उनके पास गुजारे का साधन नहीं होता, तो अंशदान के जरिए ऐसे समर्पित लोगों को प्राणवान परिव्राजक कहते हैं गुरुदेव ने।
प्राणवान परिव्राजक,
हाँ। उनको सहयोग मिलता है ताकि वो निश्चिंत होकर तीर्थ जैसे केंद्रों में रहें और लोक जागरण समाज सेवा का काम कर सकें।
अच्छा,
यही है सच्चा तीर्थ सेवन, सिर्फ लेना नहीं बल्कि समाज को वापस देना भी।
तो अगर हम सार निकालें तो पूज्य गुरुदेव के हिसाब से तीर्थ यात्रा एक तरह का मिला जुला प्रयास है।
हाँ बिल्कुल, इसमें आत्मविश्लेषण भी है, ज्ञान और कर्म का संतुलन भी है, और समाज निर्माण में सक्रिय योगदान भी।
ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि जीवन को सार्थक बनाने, बेहतर बनाने का एक पूरा नजरिया है।
सही कहा, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना।
किस बारे में?
कि क्या हम तीर्थों को सिर्फ पुरानी निशानियाँ या घूमने फिरने की जगह मानकर ही खुश हैं?
या फिर
हम उनके असली उद्देश्य को समझें, व्यक्ति और समाज का उत्थान, और पूज्य गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलकर उन्हें फिर से जीवंत बनाने में, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी कोई भूमिका निभा सकते हैं।
शायद असली तीर्थ यात्रा यहीं से शुरू होती है, इसी सोच से।
बिल्कुल।